कुछ बातें सूरत के बारे में, फिर इंशाअल्लाह ताला हम आयत की तफसीर करेंगे। सूरत फुरकान तरतीब के एतबार से 35 यानी 25वीं सूरत है, 25। गोया कि इससे पहले 24 सूरतें पढ़ी जा चुकी। मक्की सूरत है, 6 रुकू हैं, 77 यानी 77 आयात हैं। सूरत का नाम पहली ही आयत तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही इससे है। इस पूरी सूरत के अगर आप ज़माने नज़ूल को देखें तो तकरीबन सूरत मोमिनून ही का दौर है जिसमें मक्की दौर का मिडल था, यानी आप कह सकते हैं कि मक्की दौर के दरमियान की ये सूरत है। और एक रिवायत हमें मिलती है कि ये सूरत निसा से 8 साल पहले उतरी थी। इस सूरत का जो बुनियादी टॉपिक है ना, वो कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत है। सूरत का नाम ही इंतहाई खूबसूरत है, फुरकान। लफ्ज़ फुरकान सूरत के साथ भी हम देखेंगे, हक और बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़, तौहीद और शिर्क का फ़र्क करने वाली चीज़, अदल और जुल्म के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़। और बेसिकली फुरकान जो है ये कुरान पाक का एक नाम भी है। सूरत का जो मज़ामीन है इसके अंदर भी आप देखें तो तौहीद, रिसालत, ख़ास तौर पर इसमें कुरान पाक पर जो एतराज़ात थे उनका तذکرہ है और उनका जवाब भी दिया गया। और कुछ चीज़ों को बयान करने के बाद फिर दोबारा इसी चीज़ की तरफ आ जाती है। अल्लाह ताला ने सूरत के अंदर एक क्राइटेरियन भी दिया। मैं अपने ज़ाती मुशाहदे के बाद ये कहूँगी कि सूरत नूर पढ़ने के बाद सूरत फुरकान का पढ़ना वाकई इंसान के दिल को खोलता है। आप अक्सर ये पूछते हैं ना कि हमें कैसे पता चले कि ये ठीक हदीस कही किसी ने वो कही। कुरान पढ़ते जाएं, बस अल्लाह की मर्ज़ी खुद ही समझ आती जाएगी। जैसे आप किसी शहर में नए नए जाते हैं ना तो आपको वहाँ की गलियाँ नहीं पता चलती, बस आप दूसरों के कहने पे मान लेते हैं और चल पड़ते हैं, या लोग ही शुरू में तो आपको ले जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि फिर आप उन गलियों में क्या, उनके अंदर की छोटी गलियों को क्या, शॉर्टकट्स को भी जानते हैं। ऐसा होता है ना, बिल्कुल दीन के साथ भी यही मामला है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दूसरों की उंगली पकड़ के ही जा रहे हैं अभी तक दीन की गलियों में, हालांकि वो 25, 30, 40, 50 साल के भी हो गए। ये गैर फितरी तरीक़ेकार है। जैसे कि आप इस शहर में 35 साल से और आज भी आपके घर के बाहर कोई दूसरे मेरी उंगली पकड़ के ले जाएगा तो जाऊंगी, ये गैर फितरी बात है। आप में समझ की कमी है या आपके ऑब्जर्वेशन। दूसरी सूरत क्या होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल पहले दिन आते हैं और कोई उनको बताना चाहे तो कहते हैं जी चुप कर दो, बस हमें खुद ही पता है, और जाके भटक जाते हैं। ये भी दुरुस्त तरीका नहीं होता। ये उन लोगों की आदत होती है जो इल्म हासिल कोई नहीं करते, सिर्फ अटकलें लगा लगा के दीन की बातें करते हैं। जी मेरा ये ख्याल है, बिल्कुल आप इमेजिन करें ना, मैं इस शहर में नहीं आई आज ही और मैं कहूँ जी आप बैठ जाएं आराम से, मुझे खुद ही पता है रास्ते, कहाँ जाऊँगी मैं, ठोकरें खाऊंगी ना, ना नाम आते ना साइन पढ़ने आते। इस तरह वो लोग जो सिर्फ इंटेलेक्ट के नाम पर दीन में आज बहसें करते हुए दिखते हैं वो इस मिसाल में है। नेचुरल तरीका क्या है, जो सूरह फुरकान पढ़ के भी इंशाल्लाह आपको समझ आएगा कि जब आप शुरू के अंदर हैं, जैसे आप में से कुछ लोग पहली दफ़ा कुरान पढ़ रहे हैं, उन्होंने 18 पारे तकरीबन पढ़ लिए, इनको अब इस तरह फेमिलियर होना चाहिए कि आपको 18 डेज़ हो गए शहर में आए हुए, चलें और थोड़े आप डिपेंडेंट हैं, 18 हफ्ते हो गए आपको, 18 आपको महीने हो गए, साल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फेमिलियर होंगे ना। आप देखेंगे अब सूरह फुरकान के बाद आप अपनी सोच में फ़र्क देखेंगे, आपको लगेगा कि अब तो मैं पहचान गई हूँ मर्ज़ी। आहिस्ता आहिस्ता बंदे को सिर्फ कुरान ही नहीं समझ आता, अल्लाह की मर्ज़ी भी समझ आती है, तकदीर के होने वाले जो फ़ैसले हैं उनकी हिकमतें भी समझ आती हैं कि मेरे से ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों है, वो क्यों है। तो आइए सूरत शुरू करते हैं अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए कि अल्लाह ताला हमारे लिए इस सूरत के अंदर से बेहतरीन नसीहत लेने वाला हमें बनाए और फुरकान मिल जाए। बस दुआ करें फुरकान मिल जाए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल-आलमीन नज़ीरा। नहायत मुतबर्रिक है वो जिसने ये फुरकान अपने बंदे पर नाजिल किया ताकि सारे जहान वालों के लिए डराने वाला बन जाए। बड़ा प्यारा अंदाज़ है सूरत के आगाज़ का, लफ्ज़ तबारक से सूरत शुरू होती है। तबारक का लफ्ज़ बरका से है, बा रा काफ, बरका अरब लोग कहते थे ऊँटनी के बैठने को। बुरूक लफ्ज़ भी इसी से बनता है। لفظ برکت میں کسی چیز کی کثرت، زیادتی، فراوانی، اس کے اندر نشو و نما کا ہونا، یہ سارے تصور پائے جاتے ہیں. اور لفظ جب تبارک بن جاتا ہے جیسے یہاں موجود ہے تو اس میں تو مبالغہ اور کمال کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کھول کے ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اور اس لفظ کو آپ سمجھنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے سمجھ جائیے کہ آپ نے کہا کہ میں اس جگہ رکوں گا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی. اونٹنی بیٹھ کے اٹھ گئی پھر چل پڑی. اس جگہ کو آپ نے مسجد نبوی کے لیے منتخب فرمایا. پھر ابو ایوب الانصاری جو منتظر تھے ان کے گھر کے آگے سے بھی اونٹنی گزر گئی. تھوڑا سا ان کا دل بجھا لیکن تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اونٹنی پلٹی اور واپس اسی جگہ پہ بیٹھی جہاں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام فرمایا. تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی برکت تھی. اور کسی جگہ اونٹنی کا بیٹھ جانا وہاں خیر کہاں ہے. اللہ کے نبی مدینہ میں نہ آتے تو مدینہ کبھی مدینہ تو نبی نہ بنتا، یثرب ہی رہتا، طیبہ نہ بنتا. اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر جو تھی عطا کر دی. تو یہاں اللہ کی ذات نے قرآن پاک کو فرقان کہا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ حق اور باطل کا فرق جانتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد توحید اور شرک کا آپ کو فرق پتہ چلتا ہے. اللہ کے فیصلوں کی حکمت آپ کو اس کے بعد سمجھ میں آتی ہے. اللہ کی ذات نے اپنے لیے یہاں یہ بات کہہ دی کہ میں نے نازل کی اپنے بندے پہ، بہت بڑی بات ہے. کس طریقے سے اللہ کی ذات بندے کو بلندیوں کی طرف اٹھاتی ہے. پھر عرب لوگ کہا کرتے ہیں تبارکت النخلہ، فلاں کھجور کا درخت بہت اونچا ہو گیا. ایک بدو ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا تبارکت علیکم، میں تم سے اونچا ہو گیا ہوں. اسی طرح یہ لفظ ہے نا، یہ عظمت اور بزرگی کے معنوں میں بھی آتا ہے. جب کوئی عظمت اور بزرگی میں بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. کبھی یہ پاکیزگی کے معنوں میں آتا ہے. یعنی صرف اس ایک لفظ کے مختلف معنی آپ دیکھیں تو آپ کو کتنے مختلف معنی پتہ چلتے ہیں. کیسے؟ نمبر ایک، تبارک الذی نزل الفرقان میں کیا آتا ہے کہ بڑا محسن اور نہایت باخبر ہے وہ جس نے اپنے بندے کو فرقان کی نعمت عطا فرمائی، جس میں ساری دنیا کو آگاہ کرنے کا انتظام موجود تھا. پھر بزرگ کو بازمت ہونے کا بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری قدرت ہے کہ میں نے تمہارے لیے اتنے پیارے کلام کا انتخاب کیا. کیا ہم بھی قرآن سے اتنے ہی پیار کرتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ قرآن کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں. دوسری بات اس آیت کے ناطے سے نوٹ کیجئے گا، نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ سارے جہان والوں کو آگاہ کر دو. یہ نہیں کہا قرآن اس لیے نازل کیا کہ چومو، اس لیے کہ برکت لو، اس لیے کہ اس کے تعویذ بناؤ، اس سے ثواب لو. آج قرآن پاک کو جن مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے اس میں نذیر والا انداز سب سے کم ہے. اور صرف پڑھنے کا اور صرف اس سے کچھ نسبتیں قائم کرنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہے. ایک اور چیز اس آیت سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت ساری انسانیت کے لیے تھی، تبھی تو للعالمین کا. اور یہ قرآن بھی صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں اترا، سارے جہان والوں کے لیے اترا ہے. کسی جماعت کی، کسی گروہ کی اتھارٹی نہیں ہے اس پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت تو صحیح مسلم میں جس میں آپ نے اپنی 6 خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک خوبی یہ بھی بتائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کی کچھ تعریفیں ہیں. کون سی ذات؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس قرآن کی قدر اس رنگ میں بھی کرو کہ کس ہستی کی طرف سے آیا ہے. آپ دیکھیں ہم کسی بھی چیز کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں نا جدھر سے وہ آیا ہوتا ہے. گورنمنٹ کا لیٹر آیا ہو، بڑا اہم ہو، ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جنک میل ہو تو کھولتے بھی نہیں، بند کر کے پھینک دیتے ہیں. یہی بات ہے کہ تمہیں اس قرآن کی قدر کرنی ہے تو ذرا دیکھو کس ذات کی طرف سے یہ خط آیا تمہارے نام. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. سوچیں ذرا، آسمان و زمین کی بادشاہت، اتنی بڑی بات. گویا کہ سپریم پاور के फरमा रवा की तरफ से आया है। सुपर पावरों के हुक्मरानों की बातें हमें कितनी अच्छी लगती हैं, और कहाँ फिर सुप्रीम पावर वाले रब की तरफ से आया। आप इस वक्त भी अपने दिल को मौजूद पाती हैं इस बात के लिए? किसका खत इस वक्त पढ़ रहे हैं? सारे जहानों के बादशाह का खत है। कौन सा? वलम यत्तखिस वलदन, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया। वलम यकुल लहू शरीकुम फिल मुल्क, जिसकी बादशाहत में कोई शरीक नहीं, कोई शराकत नहीं। दुनिया में कितने इत्तेहाद होते हैं ना, कुछ मुल्क मिलके एक चीज़ बनाते हैं। कहीं आप यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, कुछ दो ताकतें मिलके एक बड़ी ताकत बनने की कोशिश करती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी बादशाहत में कोई शरीक नहीं, कोई जिंदा मुर्दा मैंने बीच में नहीं रखा हुआ कि जिसके साथ मैं मिल के शराकत करूँ। वह खलक कुल्ल शैइन, और उसने पैदा किया हर चीज़ को। फ़कद्दरहू तकदीरा, फिर उसने अंदाज़ा मुकर्रर किया। अंदाज़ा मुकर्रर करना बड़ी प्यारी बात है। तख्लीक के बाद तकदीर का जिक्र है। तख्लीक तो क्या है? किसी पिछली चीज़ के साथ एक नई चीज़ को बना देना। लेकिन तकदीर क्या है? कितनी हो, चींटी का साइज क्या हो, हाथी का साइज क्या हो, रेत के जर्रे कितने हैं, पहाड़ कितने हैं। आंखों पे पपोटों के खिलाफ ना होते तो कैसी होती आंखें? दिल पसलियों के अंदर ना बंद होता तो कैसे होता? अल्लाह ताला ने हर उज्व को वहीं रखा। और अगर जैसे लोग पसंद करते हैं दिल हाथ में ही पड़ा रहता हर वक्त, तो क्या करते? कब के जवान होने से पहले ही फौत हो चुके होते, पंक्चर हो जाते हैं हमारे दिल। अल्लाह ने हर चीज़ को वहाँ रखा जहाँ उसको होना चाहिए था। हमारी भी तकदीरें वही बनाई जो हमारे लिए दुरुस्त थी। हम मांगते रहे दूसरी चीज़, वो ठीक नहीं थी हमारे लिए। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा खूबसूरत बना के दुनिया में भेजा कि ज़रा कमी नहीं। कभी आपने सुना कि किसी के उंगली में लकड़ी की एक छाल चली गई? छिल्तर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? और कितनी मुश्किल से लोग खुरच खुरच के निकाल रहे होते हैं, तकलीफ होती है ना। तो मैं उस वक्त भी कभी किसी को देखूं तो मैं कहती हूँ, देखें हमारे इस जिस्म में एक छिल्तर की भी जगह खाली नहीं है, इतना प्यारा रब ने बनाया है। फकत दरहू तकदीरा। लेकिन लोगों की बदकिस्मती, इतनी शान वाले रब को छोड़कर, इतने कमालात वाले रब को छोड़कर, व तखजू मिंदू नही आलिहतल्ला यखलुकून शैया, उन्होंने तो बना रखे हैं इस खुदाए बरहक को छोड़कर ऐसे खुदा जो कुछ पैदा ही नहीं कर सकते। लात मनात बुत, और पैदा करना तो दूर की बात है। वहुम युखलकून, वो तो खुद पैदा किए गए हैं। वला यमलिकून अली अनफुसिहिम दर्रम वला नफ़ा, और नहीं कुदरत रखते अपने आप को नुकसान से बचाने की और न नफ़ा पहुंचाने की। सच है ना? वला यमलिकून मौतन, और किसी को मारने की भी सलाहियत नहीं रखते। वला हयातन, और न जिंदा करने की। वला नुशूरा, और न मरने के बाद जीने की, जिंदा करने की। यही है ना वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से अमूमन शिर्क होता है। लोग किसी के पास क्यों जाते हैं? बच्चा पैदा हो जाए। पैदा कर सकते हैं? नहीं, ला यखलुकूना। दूसरी वजह होती है किसी के भी किसी को पूछने की वजह से, कि मुझे किसी नुकसान से कोई बचा ले, फलां के जादू टूने से बचा ले। अल्लाह कह रहे हैं कि ला यमलिकून अली अनफुसिहिम दौरन। तीसरी वजह होती है किसी गैर अल्लाह के पास जाने की, नफ़े की उम्मीद, हसूलुल नफ़ा। अल्लाह कह रहे हैं वला नफ़ा। पांचवी वजह होती है किसी कब्र पे जाने की या किसी को पुकारने की, कि अल्लाह करे फलां को मार ही दें। ये दुश्मनी के लिए लोग जाते हैं, कला यमलिकूना मौतन। और एक वजह होती है कि मुर्दों में जान डाल दो। कोई अपाहज, हैंडीकैप बच्चे, उनको लेके चल पड़ते हैं, कवला हयातन वला नशूरा। कोई एक वजह भी तो नहीं है तुम्हारे पास किसी गैर के पास जाने की, मान जाओ। और इसके बाद अल्लाह के नबी की ज़ात पर जो इल्ज़ाम लगाते थे कुरान पाक के बारे में, उसका तذکرہ है। यहाँ तक तिलावत सुननी पड़ेगी।
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا